पृष्ठ संख्या 132, कविता संख्या 22, कविता हत्यारी संभावनाओं के नीचे। कविता मुर्गे की बांग पर सूरज को टांग कर सो जाओ, हत्याओं के खिलाफ ओढ़ कर निकम्मी आदतों का लिहाफ, क्योंकि यही वक्त है जबकि सिरहाने घड़ी के अलार्म का टूटा हुआ होना भी एक अदद सुविधा है, वरना तुम कर भी क्या सकते हो। यदि पड़ोस की महिला का एक बटन तुम्हारी बीवी के ब्लाउज से कीमत में बड़ा है और प्यार करने से पहले तुम्हें पेट की आग से होकर गुजरना पड़ा है, फिर भी तुम चाहो तो क्या करो कि अपने इतवार में घुसी हुई बुढ़िया को बाहर ढकेल दो, चाहे वह तुम्हारी गृहस्थी ही क्यों न हो। व्याख्या वह अपेक्षाएं जो शहर के निम्न मध्यम वर्ग के जीवन के उल्लास उत्साह अथवा सहज अभिव्यक्तियों को सहज जीवन विकास क्रम को दबोचे रहती हैं, उनका दम घोटती रहती हैं, उनके क्रूर दबाव अथवा बोझ के प्रभाव को प्रस्तुत रचना में अभिव्यक्त किया है। जीवन की ऐसी संभावनाओं की हत्या हो जाने पर जीवन में निकम्मापन आता है। व्यंग्य में उसी मूड को शह देते हुए रचनाकार कहता है कि मुर्गे की बांग पर सूरज को टांग कर सो जाओ, अर्थात जीवन प्रभात में सूर्योदय के समय जागरण के प्रतीक मुर्गे की बांग को सुनकर भी लंबी तान कर सो जाओ या सोते रहो, क्योंकि हत्यारी संभावनाओं ने सहज जीवन को दबोच रखा है। इन हिंसक संभावनाओं ने कितनी लालसाओं को अपने होने के आकर्षण के दबाव में दबोच कर मार डाला है। इस स्थिति का प्रतिरोध निकम्मी आदतों का लिहाफ ओढ़कर सो जाने के द्वारा ही हो सकता है, अर्थात निकम्मी आदतों के प्रभाव में जीते हुए सारी आकांक्षाओं के प्रति दुख नहीं होगा, भाग्यकृत मानकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा और बुरी आदतों का प्रभाव चित्त को बिदकने भी नहीं देगा। उन निकम्मी आदतों को ओढ़कर सोने की अवस्था में कोई भी जागने यह जगाने का साधन सुखद नहीं लगता, इसलिए घड़ी के अलार्म का टूटा होना भी एक अदद मानसिक सुविधा ही है। वैसे निकम्मी आदतों का लिहाफ ओढ़कर सोने के अतिरिक्त तुम कर भी क्या सकते हो। तुमने जो सहा है अथवा जो विषमता जीवन व्यवहार में तुम देख रहे हो, उसका प्रतिरोध आज की विषमता में तुम कर भी कैसे सकते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे पड़ोसी की महिला का एक बटन तुम्हारी पत्नी के ब्लाउज की पूरी कीमत से अधिक कीमती हो, तो तुम इस विषमता को मिटाने के लिए क्या कर सकते हो। यही नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार करने से पहले पेट की आग से गुजरना पड़ा है। तुम भूख के अनुभव से गुजरे हो जबकि दूसरा नहीं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। इतने पर भी यदि तुम कुछ करना चाहते हो, तो लेखक की सलाह है कि तुम्हारे विश्वास में घुसी हुई बुढ़िया अंधी श्रद्धा को बाहर निकाल कर फेंक दो, चाहे वह तुम्हारी गृहस्थी का अंग ही क्यों ना हो। अर्थात ऐसे विषमता भरे माहौल में अपनी अंधी श्रद्धा को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंको। पृष्ठ संख्या 133, तो शायद तुम्हारे काम करने के ढंग में परिवर्तन आ जाए। कविता धूप कमरे में खड़ी है, अपनी देह स्वप्नों की दीवार बनने से बचाओ। वक्त के चौकस पंजों में उम्र की गायब शक्लों को समेट कर खाल के नीचे घुस जाओ और भूल जाओ कि नींद में पेड़ के लिए तुमने जंगल से बहस की है। चीख जो अंधेरे में तुमने सुनी है, सिर्फ तुमने ही नहीं सबने सुनी है। सबने उसे ढाल पर गिरते हुए देखा है और महज एक देर सबकी आंखों में गुस्सा गुर्राया है, आंधी नुमा बेचैनी चेहरों पर छाई है। सबने महसूस किया है कैसा अन्याय है, किंतु वहां सामने कोई नहीं आया है। किसी ने नहीं कहा कि जुर्म की जगह यह है और पत्तों का हरापन डर की वजह है। व्याख्या नई जीवन पद्धति में विचारों का परिवर्तन आ रहा है, अतः अंधी श्रद्धा के साथ जीते हुए अपनी देह को स्वप्नों की दीवार बनाने से रोको, अन्यथा स्वप्नमय जीवन बने रहने पर कमरे में आई हुई धूप अर्थात विचारों की नई उष्मा, नई रोशनी प्रभावहीन बनी रहेगी। स्वप्नमय अथवा स्वप्नदर्शी जीवन वक्त के जागरूक पंजों में भी उम्र की गायब अथवा व्यतीत हुई शक्लों को ही समेटता संजोता रहता है। व्यंग्य में कहते हुए रचनाकार दुनिया की चिंता छोड़कर अपनी खाल के नीचे घुसे रहने की बात कहता है। अपनी खाल के नीचे घुसे रहने पर अपने से बाहर के प्रश्न नहीं सताते। तब स्वकेंद्रित नींद में पेड़ यानी आदमी के लिए जंगल यानी समुदाय से बहस की बात बेमानी हो जाती है। वैसी मानसिकता में तुम यह समझो कि अंधेरे की विषमताओं से उत्पन्न चीख, दर्द, पीड़ा भरी आवाजें केवल तुमने ही नहीं सुनी, सबने सुनी है। अतः उसकी प्रतिक्रिया में प्रतिरोध करने का दायित्व तो केवल तुम्हारा नहीं है, औरों ने सुनी है तो और भी जिम्मेदार हैं। ऐसा संवेदना जन्य प्रतिरोध करने के लिए जब आदमी को सभी ने ढाल पर गिरते हुए पतित होते हुए अथवा अधोगति में पड़े हुए देखा है और थोड़ी देर के लिए उन सब की आंखों में प्रतिक्रिया स्वरूप गुस्सा भी गहराया है, यही नहीं प्रतिक्रिया जन्य संवेदना में आंधी जैसी बेचैनी उनके चेहरों पर उभरी भी है। तात्पर्य यह है कि सबने महसूस किया है कि उस आदमी के साथ यह कैसा भयंकर अन्याय हुआ है। उसके प्रति हुए ऐसे अन्याय के अनुभव के बाद भी उसके समर्थन में कोई भी कमर कसकर सामने नहीं आया। किसी ने भी डंके की चोट पर सीना तान कर तर्जनी से इंगित करते हुए यह नहीं कहा कि जुर्म यहाँ हुआ है, अपराध यहाँ घटित हुआ है। अपराध सुनने वाले या करने वालों के सामने यह बता देना बहुत मुनासिब है कि अन्याय सहते हुए भी आदमी के चेहरे पर हरापन क्यों है, अर्थात पीड़ित शोषित दबे हुए आदमी में जो हरापन दिखाई देता है वह उनकी खुशहाली या हरियाली नहीं है, अपितु दिखाई देने वाला पत्तों का हरापन छाए हुए भय का परिणाम है। भय के कारण डरे हुए वह हरे से दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 134, कविता। किसी ने नहीं कहा, हर आदमी भीतर की बत्तियां बुझाकर पड़े पड़े सोता है क्योंकि वह समझता है कि दिन की शुरुआत का ढंग सिर्फ हारने के लिए होता है। हमदर्दी चेहरों से आंसू और चमड़ा बटोरती है, उम्मीद के मुखौटों पर चुंबन की तेल लगी कीलों से तसल्ली के जुमले टांकती है और फिर दूसरे मरीज की तलाश में क्षमाहीन लोगों की भीड़ में वापस चली जाती है। और तुम पाते हो कि तुम अकेले रह गए हो, हारी हुई चीज़ों ने अपने को चुनौतियों के सामने से हटा लिया है और अब सवालों की ओट में खड़ी होकर तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है। लौट जाओ, इससे पहले कि तने हुए हाथों के ठूंठ पर रोशनी की चील बीट कर दे असमय का साहस। आने वाले दिनों को चिथड़ों और सड़े हुए दांतों से भर दे, इससे पहले कि ईमानदारी तुम्हें उस जगह ले जाए जहां बेटा तुम्हें बाप कहते हुए शर्माए। तुम वापस चले जाओ, हत्यारी संभावनाओं के नीचे सहनशीलता का नाम आज भी हथियारों की सूची में नहीं है। रात खत्म हो चुकी है और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं है। व्याख्या। लेखकीय गवाही के साथ अपने विचारों को बढ़ाते हुए आगे कहता है कि किसी ने भी साहसपूर्वक यह नहीं कहा कि जीवन के संघर्ष में हार जाने के कारण ही अब हर आदमी अपने अंदर की बत्तियां बुझाकर आलस्य में पड़ा सोता दिखाई देता है, क्योंकि वह मान बैठा है कि दिन का प्रयत्न और उसका ढंग परिणाम में केवल हार हताशा ही प्रदान करता है। ऐसे हारे हुए उदास आदमी के चेहरे से उदासी दूर कराने के लिए तो हमदर्दी संवेदना आश्वासन भरा ढंढास उसके चेहरे से उदासी दूर न करके केवल उसके आंसू और उसके चेहरे पर चमड़ा ही बटोरती या खरोचती रहती है, अर्थात कोरी हमदर्दी से उसके चेहरे पर जमी हुई उदासी दूर नहीं हो पाई। इतर लोगों द्वारा पेश की गई हमदर्दी तो आदमी की उम्मीदों की चौखटों पर केवल जुमले टांगती रही है। ये तसल्ली, हमदर्दी भरे ऐसे जुमले उसी तरह आदमी के चौखटे में चुभते या गढ़ते रहे हैं जैसे कीलें चौखट में तेल लगा लगा कर गाड़ी जाती हैं। संवेदना या तसल्ली भरे इस प्रकार के चुंबन उसके चेहरे पर टंके हुए से दिखते रहे हैं, अर्थात आंतरिक सहानुभूति उसे कभी नहीं मिल पाई। प्रदर्शित की जाने वाली तथाकथित हमदर्दी आम आदमी के चेहरे पर तसल्ली के जुमले टांग कर अपने कर्तव्य की इतश्री मान लेती है। फिर वही लोग अपनी हमदर्दी लेकर उसे बांटने के लिए अन्य मरीजों की तलाश करने लगते हैं। ऐसा करते हुए हमदर्दी बांटने वाले लोग क्षमा ही निर्दयी लोगों की भीड़ से ही निकल कर आते हैं और झूठी सच्ची हमदर्दी बांट कर उसी भीड़ में फिर समा जाते हैं। इस प्रक्रिया में तुम अपने को अकेला समझते हो। तुम्हारा अकेले होने का अनुभव स्वाभाविक है। वास्तव में वर्तमान के मंच पर हारी हुई चीजें अथवा आदमी की आकृतियाँ इतनी निरुपाय अनुभव करने लगती हैं कि चुनौतियों के सामने से अपने को हटा लेती हैं। फिर वह सवालों का सामना नहीं कर पाती, अपितु सवालों की आड़ में खड़ी होकर तुम फिर चुनौतियों के सामने आकर खड़े हो जाओ, इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लेखक उग्र तेवर में जूझते हुए टूट कर नष्ट हो जाने के लिए नहीं कह रहा। वह कहता है कि बाहर ना आओ, बाहर आकर लड़ने का इरादा छोड़ दो और लौट कर अपने में समा जाओ। बाहर आने के बड़े खतरे हैं। देख लो, तुम्हारे लौटने या वापस जाने से पहले ऐसा ना हो कि तुम्हें यह देखने को मिले कि तने हुए हाथों में ठूंठ। पृष्ठ संख्या 135। मुट्ठियों पर रोशनी की चील मुट्ठियों को ठूंठ समझकर उस पर बैठ जाए और बीट कर दे, अर्थात अपनी मुट्ठियों को नाकारा निष्प्राण सिद्ध होने से पहले अपने में लौट जाओ। कहीं तुम्हारी अतिशय उग्रता या साहस आगे आने वाले समय की संभावनाओं को ही नष्ट ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाला समय तुमसे भी अधिक उग्र होकर तुम्हें चिथड़ों से ढक दे और तुम्हारे दांतों को तीक्ष्णता धार सड़ा कर कुंठित कर दे। मित्र, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेहद ईमानदारी, तुम्हारी अस्मिता, अस्तित्व बोध को उस जगह लाकर ना पटक दे जहाँ तुम्हारी ही बेटी अपनी दुर्गति के लिए तुम्हें जिम्मेदार समझते हुए तुम्हें बाप कहते हुए शर्म या संकोच का अनुभव न करने लगे। अतः तुम वापस जाकर अपनी निकम्मी आदतों की चादर ओढ़ कर सो जाओ। मेरी बात मानो, तुमने अब तक जो सहनशीलता दिखाकर अपनी दृष्टि में जो बहादुरी की है, सहनशीलता सब कुछ सहन करते हुए की वृत्ति को अस्त्र बनाकर जीवन संघर्ष की लड़ाई जो तुमने लड़ी है, वह सहनशीलता लड़ाई के इतिहास में प्रयुक्त होने वाले हथियारों की सूची में हथियार के रूप में कहीं और कभी भी नहीं गिनी गई। समझो कि रात बीत चुकी है और अब दिन में भी वह कतई सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं है, अर्थात जो हत्यारा है वही सुरक्षित है। सहनशीलता वाला सुरक्षित नहीं है। पूरी कविता में वापस चले जाओ कि व्यंजना यही है कि कब तक अपने खोल में बंद रहकर सहनशीलता दिखाते रहोगे। आगे बढ़कर हत्यारों की सूची में अपना नाम दर्ज कराओ।